ओम शांति। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? कौन कौन है पाकिस्तान के? एक, दो, तीन, चार। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? मेलबर्न। और कहाँ से हैं? यूएसए। और वो यूएसए लास्ट। यूएसए तो लगभग सभी जगह से भाई बहने बैठे हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा का परिवार पूरे विश्व में है और पूरा विश्व आकर मधुबन में मिलता है। और आज तो बाबा ने मुरली में होली की भी बात की। आज का दिन ही होली का है कि जिसको कहते हैं जलाने वाली होली, और फिर अगले दिन धूरिया माना रंग खेलने वाली होली। तो आप सभी ने होली खेली है वैसे दुनिया की रीति से? हाँ, तो होली जब खेलते हैं तो क्या कहते हैं? बुरा न मानो होली है। हाँ, होली मुबारक, लेकिन क्योंकि खेलते हैं रंगों से तो एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। ऐसे आम दिन पर अगर आप किसी को रंग लगाओ तो कहेंगे क्या हो गया आपको, है ना? लेकिन होली के दिन, हाँ, तो इसीलिए बोलते बुरा न मानो होली है। इसका मतलब क्या? आज होली है, बुरा न मानो, इसका मतलब क्या? पुरानी बीती बातों को छोड़ दे, अनबन है तो फिर से उसको छोड़ के एक हो जाए। तो अभी आज की मुरली में बाबा ने भी यही कहा कि हमारे को अपनी अवस्था कैसी बनानी है, एक रस अवस्था बनानी है। और उस एक रस अवस्था के लिए खास सावधानी दी बाबा ने संग पर, कि संग की संभाल करो, क्योंकि संग ही व्यक्ति को तारता है। बाबा की मुरली में आता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। तोते की भी कहानी सुनी होगी ना आपने, कि एक तोते बेचने वाला व्यक्ति तोते बेच रहा था और राजा ने उसे खरीदा, लेकिन दोनों की प्राइस अलग अलग थी, दिखने में दोनों एक जैसे थे। तो कहा क्यों इतना फर्क है इनकी प्राइस में? तो कहा एक जो तोता है श्लोक बोलता है और दूसरा जो तोता है काली गलौज करता है। तो क्यों ऐसा? कहा कि ये जो श्लोक बोलता है ये तोता वहां का है जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, ये वहां रहता था तो उसने वहां की उनकी संगत में रहकर श्लोक सीख लिया, और ये जो तोता दूसरा है जो गाली गलौज करता है ये कहाँ से लाया गया है? वो जो डकैत लोग होते हैं ना, उनकी गैंग होती है जो राह गुजरने वालों पर डाका लगाते हैं और आपस में गाली गलौज करते हैं, ये उनकी संगत में रहता था, वहां से लाया गया है, इसलिए ये ऐसा है। तो संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बाबा ने कहा संग की संभाल करो। तो कौन से संग की हम संभाल करें? वो तो तोते का मिसाल दिया, हम कौन से संग की संभाल करें? ज्ञानियों के साथ रहें और हाँ बुराई वाले संग में न जाएं। तो ये बुराई वाला संग अंदर भी है या बाहर? सिर्फ बाहर होता है, हमारे खुद के अंदर भी होता है ना। देखो हम लोगों के साथ तो कितना घंटा साथ में होंगे, काम भी करते हैं, एक व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रही हूँ, पास पास में होंगे लेकिन चिपक के तो नहीं होंगे ना। फिर भी एक व्यक्ति अपने काम में मगन, आप किचन में ही चले जाओ, जिसको रोटियां पकाने की सेवा उसमें है, बेलने की वो उसमें है, तो अपने अपने काम में बिजी है ना। तो सबसे ज्यादा बड़ा संग किसका होता है? इधर जो चलता रहता है ना। हाँ, अंदर में भी हमारे पास ऑप्शंस है कि हम किसका संग करें, सिर्फ बाहर की बात नहीं है। और अंदर में हम जिसका संग करेंगे उसके आधार से बाहर के संग की बात उठती है। हाँ, जैसे वैष्णव लोग होते हैं ना, तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, किसी से टच भी हो जाते हैं तो फिर स्नान करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या हो गया, किसी को स्पर्श कर लिया तो जैसे कि अपवित्र हो गए। तो बाबा कहता है कि ये तो भक्ति मार्ग में जो बातें सूक्ष्म थी उनको स्थूल में ले लिया है। वास्तव में सूक्ष्म बात क्या थी? अंदर में जो विचारों की वैरायटी है, जो वास्तव में हमको अपवित्र कर रहे हैं, उनके स्पर्श से बचना है, क्योंकि यहाँ हर पल चलता रहता है, हर पल। यहाँ तक कि बाबा के लिए भंडारे में रोटी भी बेल रहे तो यहाँ कुछ और चल रहा है ना। तो अंदर में कितने प्रकार के संग है हमारे पास। आज बाबा ने वरदान के अंदर कहा, बुद्धि को सत्व प्रधान बुद्धि बनाओ, है ना, दिव्य गुण धारण करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि को धारण करो। और कौन सी बुद्धि का नाश करो? अवगुण को धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। और क्या क्या बातें कही बाबा ने, हमें साक्षात्कार मूरत बनना है, क्योंकि बाबा हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। हम बच्चों का लक्ष्य क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। सेवाएं खूब कर रहे हैं ना हम, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें कौन सा सूक्ष्म फैक्टर है जो होना जरूरी है? जो बाह्य सेवा न भी करे तो भी उस सूक्ष्म से सेवा हो जाएगी, जो बाबा कहता है साक्षात्कार। आप कुछ मुख से बोलो भी नहीं, कुछ कर्म करके कुछ मदद भी नहीं करो, सिर्फ वो आपका दर्शन कर ले। नहीं, मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, मतलब देवी देवताओं के मंदिर में लोग जाते हैं, सिर्फ पल भर का दर्शन करते हैं, और उस पल भर के दर्शन में अपने दुखों को पल भर के लिए भूल जाते हैं। इसीलिए तो एक दुखी व्यक्ति भी क्यों जाता है मंदिर में? लोग कहते तो इतना दुखी है, जाता है फिर भी तो दुखी है, कहते लेकिन उस पल, जिस पल मैं दर्शन करता हूं, कम से कम उस पल तो मुझे राहत मिल जाती है। जो अंदर से व्यक्ति टूटा हुआ है परिस्थितियों के कारण, लेकिन वो पल भर के लिए उन साक्षात्कार मूरत देवियां है ना, वो सब उनका दर्शन कर लेते हैं, अंदर में हिम्मत आ जाती है परिस्थितियों को फेस करने की। तो उन्होंने क्या किया, हमको कुछ दिया, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ उनका खड़े हैं, साक्षात्कार हम कर रहे हैं, और हमारे में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा ने आज यही कहा कि पूरा विश्व क्या कर रही है, तुम्हारे संपन्न स्वरूप का, तुम्हारे पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है। और सिमरण कर रही माना वो हमें उस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमें उस रूप में देख रहे उसको वो प्राप्ति भी तो होनी चाहिए ना। और वो प्राप्ति कब होगी, तो पांच छह बातें बता दी। पहले तो कहा बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दूसरा क्या कहा, पुराने स्वभाव संस्कारों को समाप्त करो। तीसरा क्या कहा? दूसरों की कमजोरियों की नकल। हाँ, आजकल नकल करने का, जैसे तोते का एग्जांपल दिया ना, तोता करता क्या है? सिर्फ नकल करता है। तभी तो ऋषि मुनियों की संगत में रहकर उन्होंने वो सुनता गया, वो खुद रिपीट करता गया, तो नकल ही तो किया ना उसने। और वो चोर डकैतों की संगत में रहा दूसरा तोता, तो जो उन्होंने बोला वो उन्होंने बोला, नकल कर डाली उसने। तो की तो दोनों ने नकल, परंतु मूल्यवान तोता कौन बन गया? जिसने श्लोक गाए। और वो जो दूसरा था, जो गाली गलौज करता था, उसका मूल्य कम हो गया। तो हमें अपना क्या करना है? मूल्य बढ़ाना है, क्योंकि मूल्यवान को ही तो याद किया जाता है, जो अमूल्य होते हैं। तभी कहा कि संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप किसको कहेंगे? जो अमूल्य है उसको ही कहेंगे ना। तो हमें भी नकल करने की आदत है जरूर, लेकिन कौन सी नकल करें? अच्छी वाली नकल करें। तो दूसरों की कमजोरियों की नकल नहीं करो। किसकी नकल करें? जो बाबा ने खुलेआम कह दिया है, फॉलो फादर। बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते, उस फोटो स्टेट वाली मशीन को भी अक्ल है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करती है वो। नहीं, और मैंने तुमको और कोई ज्यादा काम नहीं दिया, सिर्फ कॉपी करने का ही काम दिया है। कुछ नया, बच्चे कहते बाबा बुद्धि नहीं चलती, मतलब किस क्यों चला रहे हो ज्यादा बुद्धि? जो मैंने किया है उसको कॉपी करते जाओ, बस इतना ही तो बोल रहा है। नहीं, एग्जाम में भी जाते हैं तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, वहां कॉपी करना अलाउ नहीं होता है। लेकिन बाबा के ज्ञान में तो बाबा कहते कॉपी करो, मैं इतना ईजी कर दिया तुम्हारे लिए। और ये भी बता दिया, पेपर एक सेकंड का है, वहां तो घंटे 3 घंटे बैठना पड़ता है, तो 3 घंटे में क्या क्या लिखना है, वो इतना सारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड का पेपर होगा, और सिर्फ तुमको क्या तैयारी करनी है? मुझे फॉलो करते जाओ, मुझे कॉपी करते जाओ, बाबा की याद में रहो। तो दूसरों की कमजोरियों की नकल नहीं करनी है, लेकिन बाबा को कॉपी करना है। देखो बाबा कहते हैं, यूं देखा जाए तो हमारी पढ़ाई के 4 विषय हैं। कौन कौन से 4 विषय हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो अगर मुझे पढ़ाई में विथ ऑनर पास होना है, तो मुझे इन 4 सब्जेक्ट्स पर अच्छी से अटेंशन देना है। परंतु कई बार बाबा ये बात नहीं कहकर बाबा कहता है फॉलो फादर, जबकि पढ़ाई का लक्ष्य है, पढ़ाई के 4 विषय है, तो पढ़ाई माना ही जो विषय है उसमें संपूर्ण बनना। लेकिन बाबा कई बार ये नहीं कहकर ये कहता है फॉलो फादर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इन 4ों को अपने जीवन में उतारा, और इसलिए उनकी जीवन हमारे लिए क्या हो गई? फॉलो फादर। कि तुमको बुद्धि भी नहीं लगाना है कि मैं योग के विषय में कितना आगे बढ़ूं, धारणा के विषय में कितना आगे बढ़ूं, ज्ञान के विषय में कितना आगे बढ़ूं, सेवा के विषय में कितना आगे बढ़ूं। नहीं, वो सब ब्रह्मा बाबा ने किया। अब सिर्फ तुम क्या करो, उसकी जीवन को देखते चलो और उसके कदम पर कदम रखते चलो। तो अपने आप जो पढ़ाई के 4 विषय हैं, उन 4ों विषय में हम पास विद आनर हो ही जाएंगे। तो इसलिए दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। नकल करनी है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की नकल हम करें। और ब्रह्मा बाबा की नकल करना माना ब्रह्मा बाबा के प्रति भी मेरे मन में कितना प्यार है, उससे भी मैं पता कर सकती हूँ कि क्या मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करती हूँ। क्योंकि कोई चीज के लिए आकर्षण कब होता है? आज एक पत्थर को मैं ऊपर फेंकू तो पत्थर क्या होता है? नीचे। क्यों नीचे गिरता है? हाँ, तो नीचे क्या है? धरती। धरती खुद क्या है? भारी है। तो हर भारी चीज को वो क्या कर लेती है? अपनी ओर खींच लेती है। दिया जलाया, मोमबत्ती जलाई, आग जलाई, जो भी है, उसकी लौ किधर जाएगी? क्यों? क्योंकि लाइट का जो सोर्स है सूर्य, वो ऊपर। लाइट का सोर्स हमारा भंडार है ना, वो सूर्य। तो इसलिए हर प्रकाश की चीज को भंडार की तरफ, माना हर चीज अपने भंडार की तरफ खींची चली जाती है। अब मैं अपने आप को चेक करूं, मेरा खींचाव ब्रह्मा बाबा के प्रति कितना है, उसके आधार से मैं समझ सकती हूँ मैंने कितने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया है, है ना? कि खींचती कब है चीज? जब उसके जैसे गुण उसमें होंगे ना, तो मैं अपने आप को चेक करूं ब्रह्मा बाबा को कितना जीवन में मैं फॉलो करती हूँ। तो औरों की नकल नहीं करो, लेकिन बेशक ब्रह्मा बाबा की नकल जरूर करें, उसकी फुल छुट्टी है। नहीं तो दुनिया में तो कई बार चिढ़ाते हैं, ये तो उसकी ट्रू कॉपी, बस वो जैसे करती उसके पीछे पीछे चलती है ना। चिढ़ाते जब दो भाई होते ना छोटे छोटे, तो छोटा भाई जैसे वो बोलेगा वैसा करता है, ये तो इसका मुरीद है, ये जैसा करेगा वैसा करेगा, इसको पहले मत पूछो, इसको पहले पूछो, है ना। तो वहां पे चिढ़ाने जैसी बात क्रिएट हो जाती है कि इसको अपना दिमाग नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको अपना दिमाग नहीं है, लेकिन बाबा ने खुली छूट दी है कि तुम अपना दिमाग लगाओ ही नहीं, तुम क्या करते जाओ? कॉपी करते जाओ। तो दूसरों की नकल नहीं करना है। और चौथी बात कौन सी कही थी बाबा ने? अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, क्योंकि बुद्धि माना ही क्या? ज्ञान कहाँ जाता है? अंदर जाके स्टोर होता है ना। देखो आज 5 और 5 10 होते हैं, या 5 और 5 11 होते हैं? 5 और 5 कितने होते हैं? वो कैसे आंसर सही पता चलता है कि 5 और 5 10 होते हैं और 5 और 5 11 नहीं होते हैं? कैसे पता चलता है ये? शुरू से पढ़ा है, वो जो पढ़ा है वो अंदर है, माना धारण किया हुआ है, और जो धारण किया हुआ है उसके आधार से हम डिसीजन लेते हैं। तभी डिसीजन लिया अभी। 5 और 5 क्या होते हैं? 10 होते हैं। 5 और 5 11 नहीं होते। तो बुद्धि माना स्टोरेज, अंदर में स्टोर होता है। तो उसमें क्या स्टोर नहीं करो बाबा कहता है? अवगुणों को नहीं धारण करो। अगर है ऐसी बुद्धि तो उसका क्या कर दो? खात्मा कर दो, उसका विनाश कर दो। उसके बदले में क्या धारण करो? दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि, उसको धारण करो। दिव्य गुणों वाली सतो प्रधान बुद्धि। अब ये दिव्य गुणों वाली सतो प्रधान बुद्धि माना क्या? आत्मा माना ही मन बुद्धि संस्कार। आत्मा माना ही मन बुद्धि संस्कार। अब अगर बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है, माना आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है ना, क्योंकि वो तो उसकी 3 अलग अलग शक्तियां है ना। कि आत्मा ऐसे आत्मा अलग है और मन अलग है और बुद्धि अलग है, ऐसी तो बात है नहीं। वो आत्मा की ही 3 शक्तियां है। तो अगर बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है, माना ही आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और आत्मा को सतो प्रधान बनाना माना क्या? मुरली के अंदर बाबा बताते पूरे साइकिल को अगर देखें तो हम सतो प्रधान कब होते हैं, तमो प्रधान कब होते हैं, सत्ययुग में हम क्या होते हैं, हम सतो प्रधान होते हैं, और त्रेता युग में हम क्या होते हैं, त्रेता युग में हम क्या होते हैं, हाँ हाँ सामने आके बैठे ना तो मुझे भी ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा हाँ तो उसको क्या नाम देंगे, हाँ इधर आ जाओ, या तो सत्युग में आत्मा सतो प्रधान है और त्रेता में आज हमारे ज्ञान की परीक्षा होगी मुरली रोज सुनते हैं ना, हाँ रोज मुरली में ये शब्द आते रहते हैं, सतो रजो तमो, सतो प्रधान तमो प्रधान रजो प्रधान, पूरे साइकिल के अंदर इवन यहाँ तक जो लैडर है, जो सीढ़ी का चित्र है, उस सीढ़ी के चित्र में भी आत्मा, वो जो चार युग दर्शाया है ना सीढ़ी के माध्यम से भी, तो उसमें आत्मा एक एक युग में आत्मा को दिखाया है, तो चार स्टेजेस से गुजरती है आत्मा उसमें दिखाया है। तो दूसरे युग में क्या कहते हैं आत्मा को नहीं पता, फिर अंतर क्या हो गया, अगर त्रेता में भी आत्मा सतो प्रधान है तो सत्ययुग और त्रेता में अंतर क्या हो गया, चंद्रवंशी है ना, तो फिर नाम भी जैसे सूर्यवंशी से वो चंद्रवंशी बनी, तो सतो प्रधान से भी तो कुछ और बनेगी ना, वो सतो, सतो सामान्य है ना, सतो सामान्य बोलते हैं ना, और फिर नीचे उतरेंगे द्वापर में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। अब राइट हो गया सीक्वेंस कि चार युग में आत्मा क्या क्या होगी। अच्छा अब ये बताओ, आत्मा जब सत्ययुग में सतो प्रधान है तो उसमें सतो रजो तमो है या सिर्फ सतो है, सिर्फ सतो है। अच्छा फिर द्वापर में क्या है, तो सॉरी त्रेता में हाँ चारों कौन सी क्वालिटी, गुण तो तीन बताए ना, गुण तो तीन ही है ना सतो रजो तमो, तो सत्ययुग में ये तीनों गुण होते हैं या नहीं होते हैं। तो सत्ययुग में सिर्फ सतो गुण होगा। अच्छा चलो त्रेता में कौन सा गुण होगा फिर, बुद्धि चलाओ बुद्धि चलाओ तभी ज्ञान अंदर बैठता है जब अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, नहीं तो सिंपल ऐसे सुनते जाते हैं ना बाबा का ज्ञान तो मना उसका अर्थ में नहीं उतर पाते हैं। चलाओ बुद्धि अभी, हाँ सतो प्रधान तो बता दिया हम सत्ययुग में होते हैं, लेकिन ये तीन गुण सत्ययुग में होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। अच्छा त्रेता में क्या होगा फिर, कौन सा गुण होगा, अगर सतो प्रधान है उस समय तीनों गुण नहीं होंगे तो सिर्फ एक गुण होगा, कौन सा वाला, सतो, और फिर त्रेता में कौन सा वाला गुण होगा, कौन कौन से दोनों मिक्स। अच्छा तो मतलब सत्ययुग में सिर्फ सतो और त्रेता में नहीं, तीन गुणों में से कौन कौन से गुण किस किस युग में रहेंगे मुझे ये बताओ अच्छी से। सत्ययुग में सतो प्रधान, वो तो प्रधानता की बात अलग, अब ये तीन गुण है सतो रजो तमो, ये तीनों गुण चारों युग में रहेंगे या हर युग का अलग अलग हिसाब है, त्रेता में। अच्छा अच्छा और तमो नहीं रहेगा, अच्छा तमो नहीं रहेगा, द्वापर में तमो आ जाएगा, देखो मैं आपका एक एग्जांपल देती हूँ, आप चाहे एक मोमबत्ती जलाओ चाहे एक दिया जलाओ,
जैसे ही आप माचिस की तीली लगाते हो ना, तो जब बत्ती जलती है आप देखो नीचे के टिप में काला होता है, जहां आपने दिया को लगाया वह काला होता है, बत्ती को या मोमबत्ती की जो ऐसी होती है वहां इतना काला जरूर दिखेगा, वो काला होगा ही होगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा रेडिश दिखेगा, उसके ऊपर व्हाइट आता है, होता है ये? मतलब अगर एक बत्ती जलेगी तो ये तीनों होगा उसमें। तो ऐसे एक आत्मा जब जीवन में आएगी ये तीनों हो गए उसमें, चाहे फिर वो सत्ययुग में आए। जैसे देखो ज्वेलरी होती है ना, गोल्ड होता है, गोल्ड होता है 24 कैरेट का प्योर माना जाता है, लेकिन मतलब एक बाबा कहीं बोलता है ना, जैसा सोना होगा वैसा जेवर बनेगा, ऐसे ही बोलता है ना बाबा, सोने से जेवर बनता है। अब सोना 24 कैरेट प्योर माना, 100% प्योर माना जाता है ना, लेकिन क्या 24 कैरेट जो प्योर सोना है उससे ज्वेलरी बनती है? मिलावट करनी पड़ती है। क्यों? नहीं होता है। ठीक ऐसे ही वो आत्मा जब जीवन में आएगी ना, तो बिना रजो और तमो के आ ही नहीं सकती है। समझ में आ गया? क्योंकि ये रजो और तमो गुण कोई बुरा गुण नहीं है, ये चाहिए। जैसे कहा ना कि सोना से जेवर बनाना है, उसकी पकड़ आने के लिए उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ हो, वो दूसरा मेटल डालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो टांका भी नहीं लग सकता है, वो शेप जो देना चाहते वो भी नहीं, और अगर बना भी लिया और पहन भी लिया तो थोड़े ही दिन में वो खराब भी हो जाएगा, है ना। वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि वो मुड़ता जाएगा, उसका जो शेप आपने दिया है वो पूरा नष्ट हो जाएगा उसका। तो ऐसी ज्वेलरी पहन के करोगे क्या? ऐसी ज्वेलरी, ऐसा जेवर पहनकर करोगे क्या? तो डालना जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही ये रजो और तमोगुण क्या चीज है? क्योंकि आत्मा अगर ऊपर बैठी है तो बाबा क्या कहता है, ऊपर तो तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ बैठे हो वहां पर बाबा के पास, आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि हम भगवान के पास बैठे हैं। वो तो एहसास कब है? संगम पर है हमें, लेकिन वो जब परम धाम में होंगे वो एहसास भी नहीं होगा। इसलिए वो एहसास होना कब है कि जब आत्माएं शरीर में है तब है, जब बिना शरीर के तब एहसास नहीं है उसको, शरीर में है। और शरीर में आना माना ही ये जो हम कहते हैं ना आत्मा के, पहला लेसन जब हम आत्मा का देते हैं तो हम क्या बताते हैं, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से? जो सात गुण बताते हैं, और उसको ही हम फिर बोलते हैं सतो गुण। उसको ही हम क्या बोलते हैं? सतो गुण, उसी को बोलते हैं ना। तो ये आत्मा के खुद के संस्कार हैं। और बाबा मुरली में कई बार क्या कहता है, अब रावण के संस्कार छोड़ो, बाप के संस्कार धारण करो। मतलब आत्मा के खुद के संस्कार है सतो गुण, लेकिन बाप कहता है कि अब तुम रावण के संस्कारों को छोड़ो और बाप के संस्कारों को धारण करो। मतलब ही क्या, ये रावण क्या चीज होती है? आत्मा, संग की बात कही ना बाबा ने, संग तारे कुसंग बोड़े। हम आत्माएं जब परमात्मा पिता के घर से नीचे उतरे तो हम सतो प्रधान थे, और सतो प्रधान थे माना ही क्या थे, सातो गुण थे, उसका उल्टा कुछ नहीं था, अज्ञानता नहीं थी, प्रेम का उल्टा घृणा नहीं थी, शांति का उल्टा अशांति नहीं थी, शक्ति का उल्टा कमजोरी नहीं थी, आज बाबा ने वही कहा ना, उल्टी सी ज्ञान की बातें नहीं करते तो उल्टी सीधी बातें होती है फिर, है ना। तो जब वो था तो उल्टी सीधी बातें उलट पुलट नहीं होता है। तो आत्मा में सतो रजो तमो ये तीनों गुण सदा ही रहते हैं, चारों ही युग में रहते हैं। अब ये जो रजो गुण है और तमो गुण है और सतो गुण, सतो गुण को तो हम पहले ही लेसन में बता देते हैं ना, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, ऐसे करके बताते हैं ना। फिर जब चार युगों का लेसन देते हैं, मन सृष्टि चक्र का लेसन देते हैं, तो उसमें जब ये आता है कि हमने ऐसे ऐसे यात्रा शुरू की और ऐसे हमारी यात्रा यहाँ आकर खत्म होगी, फिर हम फिर से घर जाएंगे एक बार और फिर से वैसी ही यात्रा शुरू करेंगे, तो लोग कई बार पूछते हैं, बहन जी अगर ऐसे ही करना है वापस जाके फिर वही शुरू करना है, क्योंकि कईयों के जीवन में दुख बहुत है, तो कहते इतने दुख से गुजरने से अच्छा है ऊपर ही क्यों नहीं बैठे रहे, ऊपर ही क्यों नहीं बैठे रहे, क्यों आके इतना दुख झेले, है ना। जरूरत क्या है ऐसे आना फिर चक्कर लगाना फिर जाना फिर आना फिर जाना, उससे तो बैठे ही रहे ना। तब हम क्या जवाब देते हैं उनको, हाँ वही मतलब आना नहीं माना वहीं बैठे रहना, तो हम क्या जवाब देते हैं उस समय, क्या जवाब होता है उस समय। हाँ, आत्मा में कर्म करने का संस्कार है, आत्मा कर्म किए बिना रह नहीं सकती। तो ये रजोगुण कुछ नहीं है, कर्म करने का संस्कार है। हाँ, रजोगुण क्या है, कर्म करने का संस्कार है। हाँ, आज हम कहते हैं कि दुनिया में खुशी नहीं है, लोग वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, बिल्डिंगे बना रहे हैं, धन प्रतिष्ठा ये सब कुछ बाह्य कमा रहे हैं, तब हम उनको कहते हैं नहीं ये तो तुम्हारे अंदर है, ये तो तुम खुद हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मतलब तुम सतोगुणी हो, ये सातो गुण तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार है। और दूसरा जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हम आ गए, तब हम कहते हैं नहीं कर्म करने का संस्कार है। जब बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं तो हम क्या जवाब दे रहे हैं उनको, बाहर मत ढूंढो, ये तुम्हारा खुद का संस्कार है, इसको अनुभव करो। और जब साइकिल समझाते और कहते हैं कि इससे अच्छा ऊपर ही बैठे रहे, तब क्या कहते हैं, नहीं आत्मा में कर्म करने का संस्कार है, इसलिए कर्म वो जरूर करेगी, इसलिए वो ऊपर बैठ नहीं सकती। तो ये क्या है, ये रजोगुण ही तो है, रजोगुण ही कर्म करने का संस्कार है। तो फिर तमोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, मुरली में ये भी बात आती है, आत्मा जब थक जाती है ना कर्म करते करते, तो आत्मा कहती है अब मैं इंद्रियों से परे अशरीरी होकर सो जाती हूँ। आता है मुरली में ये, सुना है ध्यान से कभी, आते रहता है ना ये बात, यही तमोगुण है। आत्मा जब कर्म करते करते थक जाती है तो आत्मा कहती है अब मैं इन कर्मेंद्रियों से परे होकर अशरीरी होकर सो जाती हूँ, ये तमोगुण है। तब कहा कि जैसे सोने से ज्वेलरी बनानी है तो दूसरा मेटल चाहिए ही चाहिए, ऐसे आत्मा जीवन में आएगी तो ये चाहिए ही चाहिए। मतलब आत्मा के भी जो सात गुण हैं, हम क्या कहते हैं आत्मा क्यों आ रही है, कि एक एक्टर के पास अगर टैलेंट है, अगर पोटेंशियल है, उसको रंगमंच नहीं मिलेगा तो एक्सप्रेस कैसे करेगी, अभिव्यक्त कैसे करेगा वो एक्टर, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो सत्व गुण क्या है, आत्मा का टैलेंट है, आत्मा का पोटेंशियल है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करे तो रंगमंच और कॉस्ट्यूम, शरीर चाहिए, शरीर तो शरीर मिलता है, धरती मिलती है, पूरा रंगमंच है धरती, और वहां आकर वो कर्म करके वो जो टैलेंट है, जो सात गुण है उसके पास, वो उसको क्या कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन फिर एक बार अभिव्यक्त किया तो जैसे एक्टर भी उसके पास टैलेंट था, पोटेंशियल था, आया रंगमंच पे एक्टिंग की, लेकिन कंटिन्यूस तो नहीं करता रहेगा ना 24 घंटा, थकेगा ना। अब क्या कहेगा, आप छुट्टी, अब कल आएंगे पर्दे पे, है ना, स्टेज पे कल आएंगे, अभी घर जाते हैं। तो ये सो जाना, मतलब जो कार्य कर रहे थे उस कार्य से अपने आप को हॉलीडे देना। होली और हॉलीडे चल रहा है ना, तो हॉलीडे, इन कर्मेंद्रियों को हॉलीडे दे देना, यही है तमोगुण। तो सत्युग में भी तो हम कर्म करेंगे ना, सोएंगे नहीं सोएंगे, 24 घंटा जागते रहेंगे। हाँ, सोएंगे ना, तभी कई बार बाबा कहता है ना कि बच्चे सत्युग में तुमको ऐसे अमृत वेला नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को अभी आदत है ना कि बाबा बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो बाबा दिलासा देता है, बच्चे सिर्फ संगम पर करना है, फिर तो तुम आराम से उठोगे 5 बजे। मतलब सोएंगे तो जरूर ना हम लोग। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे सोने को भी अगर जेवर बनाना है तो दूसरा मेटल डालना ही पड़ता है ताकि उसको शेप मिले। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाल दिया तो फिर वो सोना सोना नहीं लगता, है ना। ऐसे ही अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाए ना, तो फिर वो जो जीवन जिसके लिए था कि इसको अभिव्यक्त करना था 7 गुणों को, तब वो 7 गुण अभिव्यक्त नहीं होते हैं, फिर जो डाला है वो अभिव्यक्त। तभी देखते हैं जो ना पारखी होते हैं, देखेंगे ये इसमें तो बहुत मिलावट है, इसका कलर ही बता रहा है, बोलते हैं ना ऐसे। जबकि मालूम है कि प्योर भी जिस ज्वेलरी 24 कैरेट की हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो सिर्फ उस ज्वेलरी को शेप देने के लिए चाहिए होता है, तो भी हम उसको प्योर मान लेते हैं, क्योंकि इतना तो चाहिए ही था। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो अरे वो क्लियर दिख रहा है, नकली, इतनी मिलावट है उसमें। तो ये 2 गुण अगर ज्यादा हो जाए ना, तब ये हो जाता है रावण का संस्कार, तब ये रावण का संस्कार हो जाता है। और ये ज्यादा क्यों हो जाता है, जो आज बाबा ने संग की बात कही ना, संग के कारण। आत्मा जब पहली बार धरती पर उतरी, मतलब ही उसको संग मिला शरीर का, और पूरे साइकिल में अब इसको मिल रहा है संग। तो दिनों दिन संग क्या हो रहा है शरीर के साथ, बढ़ता जा रहा है। और इसलिए दिनों दिन रजोगुण तमोगुण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रधान शब्द कब यूज होता है, जो हमने कहा ना सतो प्रधान रजो प्रधान, ये प्रधान शब्द यूज होना ही अपने आप में एक साइन है कि सतोगुण अकेला नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ये ग्राम का प्रधान है, ये कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब क्या भारत में सिर्फ कृषि होती और कुछ नहीं होता है? लेकिन ज्यादा मात्रा में कृषि होती है, इसलिए कहते हैं कृषि प्रधान देश। जैसे कहते हैं ये प्रधानमंत्री है, तो क्या अकेला प्रधानमंत्री देश चला रहा है, पूरा एक मंत्रिमंडल है उसके पास, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है, उस प्रधान के हाथ में। इसलिए कहने में आया वो उस पर्टिकुलर एक मंत्री के हाथ में कंट्रोल है, इसलिए कहने में आया ये प्रधानमंत्री, कि पूरे मंत्रिमंडल में जो मंत्री है उनमें से इस मंत्री को प्रधान माना गया है। तो प्रधान शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आत्मा में दूसरे गुण भी है, जब आत्मा सतो प्रधान है तो चारों ही युग में आत्मा में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। क्योंकि शरीर में आके और फिर कर्म करना तो रजोगुण चाहिए ना, फिर कर्म करके थोड़ा रेस्ट लेना वो भी तो चाहिए ना। तो ये तीनों गुण हर युग में आत्मा में रहेंगे, लेकिन कौन सा गुण किस युग में ज्यादा रहेगा, उस आधार से उस युग में उसको उस नाम का प्रधान से जोड़ दिया। तो जब हमने कहा कि सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, माना ही सतयुग में सतोगुण का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और रजोगुण और तमोगुण बहुत कम है। सिर्फ इसलिए है वो कि सतोगुण को मैं जीवन से क्या कर सकूं, दिखा सकूं। और यही तो था हमारा सतयुगी जीवन। हम क्या करते थे सतयुगी जीवन में? उमंग और उल्लास की जीवन। बाबा कहते हर दिन फेस्टिवल। अभी तो साल में कोई दिन फिक्स है कि इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन राखी होगी, इस दिन दशहरा होगा, इस दिन ये मतलब एक एक दिन फिक्स है। लेकिन सतयुग में क्या होगा? हर दिन उत्सव। क्यों? क्योंकि जीवन में उमंग और उल्लास है, क्योंकि आत्मा में वो सातों गुण क्या है, फुल है, तो वही अभिव्यक्त हो रहा है ना। आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा प्यार है, जीवन में खुशियां ही खुशियां है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जहां हम टूट जाएंगे, क्योंकि शक्ति से भरे हुए हैं ना, शक्तिशाली है हम। अशांति नाम की कोई चीज नहीं होगी जीवन में, क्योंकि शांति भरी पड़ी है ना, तो शांति जीवन में एक्सप्रेस हो रही है। और इसीलिए बाबा कहते वहां पे कोई जेल नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, क्योंकि अशांति होगी ही नहीं, तो कहां से जेल और उसकी जरूरत पड़ेगी ना। एक तो उससे अशांति होती है, एक तो शरीर गड़बड़ करता है तब भी अशांति हो जाती है। तो बाबा कहते डॉक्टर भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे, कोर्ट भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना परसेंटेज है आत्मा के पास उसके खुद के गुणों का, प्रेम खुशी आनंद, जो उसके खुद का पोटेंशियल टैलेंट है, इतना परसेंटेज है। और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए वो आई है। उसने शरीर लिया और उस शरीर से कर्म करते करते वो दिखा रही है कि मेरे पास शांति है, प्रेम है, खुशी है, और उसको एंजॉय कर रही है वो। और फिर एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर से सो जाती है, रिफ्रेशमेंट चाहिए ना मेरे से, और फिर सुबह उठकर फिर वही चल रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में आत्मा जो एक बार अपने गुणों को व्यक्त करने के लिए उतरी है नीचे, अब उसका संग इस शरीर के साथ बढ़ता जा रहा है। हर एक दिन बीतता है इसके संग का परसेंटेज बढ़ता है, ऐसे ही होता है ना। और इसके संग का परसेंटेज बढ़ता है और साथ साथ में क्या घटता है, सतो गुण घटेगा। क्योंकि इसका संग बढ़ा माना रजोगुण बढ़ा, इसका संग बढ़ा माना तमोगुण बढ़ा। क्योंकि कर्म करेंगे फिर सोएंगे, फिर कर्म करेंगे फिर सोएंगे, फिर कर्म करेंगे फिर सोएंगे, तो ये बढ़ेगा। तो सतोगुण क्या होगा? यूज हो रहा था ना कर्म करते समय, तब ये क्या होगा, सतोगुण क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एक ग्लास में, आजकल ग्लास में भी दिए जलाते हैं ना, वो आधा तक पानी भरते हैं, फिर थोड़ा ऊपर तेल रहता है, फिर थोड़ा ऊपर खुला मतलब हवा है ना। तो ये जो ग्लास है समझो इतना बड़ा है, इस 100% के अंदर इनका डिवीजन हो गया, तेल का पानी का। इसमें आएगा तो टोटल 100 ही ना। अगर आप तेल को बढ़ा दो तो हवा कम हो जाएगी, हवा के लिए स्पेस, ऐसा ही होगा ना। तो इन तीनों का परसेंटेज हमेशा ग्लास का जो 100% उसके अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो तीन गुण हैं, इन तीनों का 100% जोड़ मतलब हमेशा 100 रहेगा। और अगर इन तीनों का जोड़ हमेशा 100 है, तो अगर रजोगुण और तमोगुण बढ़ते जा रहा है धरती पे आने के बाद, तो इसको 100 इक्वल रखने के लिए सतोगुण क्या होगा, कम होगा ना। मतलब ही बैटरी डिस्चार्ज इसी को तो बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, बैटरी का डिस्चार्ज होना माना ही दिए को जलाया, तेल डाला, फिर जलाया उसको, प्रकाश हुआ। लेकिन जैसे इसको जलते रहने दिया, मना ये प्रकाश तो देते गया लेकिन तेल क्या होते गया, तेल कम होते गया। और पहले जितना प्रकाश दिया था ना, अब जलते जलते प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश भी कम होता जा रहा है ना। तो हम भी आए थे जीवन में किस लिए, अपनी खुशियों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए आए थे। तो अभिव्यक्त करते 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 क्या हुआ, परसेंटेज इसका क्या हुआ? इसीलिए त्रेता में जाके हम सतो प्रधान नहीं रहे, क्या रहे? सतो सामान्य। और सतो सामान्य यहाँ पे प्रधान शब्द नहीं है, यहाँ पे प्रधान शब्द नहीं है, बाकी तीन युगों में प्रधान शब्द आ रहा है, लेकिन त्रेता में प्रधान शब्द नहीं है। और इसका मतलब क्या? सतो सामान्य है ना? नहीं, सतो प्रधान से मतलब सतो प्रधान माना सतो का गुण बहुत हाई है, लेकिन जब सतो सामान्य बोल रहे हैं और सतो अगर हाई है तो रजो और तमो उसकी भेंट में बहुत कम है, लेकिन जब सामान्य शब्द आ गया तब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। समझ में आ रहा है अभी? क्योंकि सतो कम हुआ और रजो संग बढ़ा तो बढ़ गया, पर इतना नहीं बढ़ा कि सतो को पार कर जाए, इसलिए प्रधान नहीं बोल सकते। और इसीलिए कहा कि हम लोग जब त्रेता में आएंगे तब भी हम खुशियों वाला ही जीवन जिएंगे, तब भी जीवन में प्रेम होगा, आपस में शांति होगी, तब भी उमंग और उल्लास होगा, हर दिन त्रेता में भी हर दिन उत्सव ही होगा। परंतु जैसे कहा ना, दिया पहली बार जला उसका प्रकाश और थोड़े समय के बाद का प्रकाश है ना, तभी का सिर्फ दो कलाएं कम होती हैं। वहां पे हम क्या है, 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा ना, अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि विश्व आपके संपन्न स्वरूप को, आपके पूज्य स्वरूप को सिमरण कर रही है। तो लेकिन वो संपन्न स्वरूप हमारा कौन सा है? सत्युग वाला, त्रेता वाला नहीं। वहां पे फिर भी दो कला क्या हो गई हमारी। इसीलिए क्या कहा, बुद्धि को क्या बनाओ, सिर्फ सतो बनाओ नहीं बोला, सतो प्रधान बनाओ बुद्धि को, माना 100% कि जहां हम उतरे हैं अभी जस्ट, सिर्फ रजो और तमो तो सिर्फ नाम मात्र जीवन में आने के लिए था। हाँ जी, दिया कभी? हाँ हाँ, दिया कभी नहीं बुझेगा। क्यों? क्योंकि अजर अमर अविनाशी आत्मा, तो कैसे बुझेगी? वो दिया तो आप जलाते हो फिर भी बुझ जाता है, दूसरा जला दो, पर ये भी एक दिया ही हुआ ना, ये भी तो ज्योत जल रही है ना, लेकिन ये अजर अमर अविनाशी है तो ये कंप्लीट नहीं बुझेगी। हाँ, इतनी सी हो जाएगी, इतना बड़ा जो प्रकाश का घेरा फैलता है। इसीलिए तो देखो सत्युग में जो ये दिखाया ओरा हमारा, जिसको बाबा कहते हैं तुम डबल ताजधारी होते हो, एक तो रत्नों से जड़ित ताज होगा और दूसरा तो वो प्रकाश वाला ताज होगा, वो कोई स्थूल नहीं होगा, वो तो ये आत्मा जो है इसका प्रकाश ही वो ताज के रूप में दिखाया है। जैसे आप पूनम के चांद को देखेंगे ना, तो पूनम के चांद के दिन आप देखेंगे जो चांद है उसके चारों ओर फिर और एक सर्कल दिखेगा आपको, और उस सर्कल से बाहर जा रहा है उसका प्रकाश, और उतने एरिया में वो जो चांद है उसमें से ऐसे किरण निकलते हुए नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। तो वही हमारा जो इतना प्रकाश होगा कि वो ऐसे अलग से एक सर्कल बनेगा और वहां से फिर प्रकाश रेडिएट होगा। तो हमको उतना दिए को प्रकाशित करना है, सतो प्रधान बुद्धि बनाना, मतलब यहाँ पे कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज जिनको लेकर मैं नीचे उतरी थी, सिर्फ और सिर्फ वही। इसीलिए आज बाबा ने क्यों कहा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से रिलेटेड बातें करो, बाकी अगर कोई बातें करता है तो न सुनो न सुनाओ, सुनो भी नहीं और सुनाओ भी नहीं, क्योंकि सुनोगे तो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा मना जैसे कहा कि ग्लास है, अगर मैंने इतना पानी डाला है तो हवा का पोर्शन इतना ही है, लेकिन और पानी डाला तो हवा का पोर्शन कम हो गया ना, हाँ लेकिन कौन सी कर्म हमने नहीं किए सतयुग में, कर्म किए कि नहीं किए? यही तो बाबा हमको सिखा रहा है कि हम जब ये कहते हैं ना कर्म करना है तो सब करना पड़ेगा, वही तो बाबा याद दिला रहा है कि सतो प्रधान माना है क्या, याद करो सतयुग को। क्या सतयुग में हम कर्म नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे ना, तो वैसे वाले कर्म करो कि सतयुग में हमारी आपस की जो लेन देन थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की थी। प्रेम का जो उल्टा होता है घृणा नफरत, उसकी नाम मात्र भी लेन देन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शांति की लेन देन। उसका जो उल्टा होता है अशांति, उसकी लेन देन नहीं। सतयुग में हम किसी की बैक बाइटिंग करेंगे, मतलब पीठ पीछे कुछ बुरा बोलेंगे किसी को? हम करते हैं ना अभी हम किसी की निंदा करेंगे सतयुग में? नहीं, वही तो मुझे बाबा ने जो बोला ना कि विश्व तुम्हारे संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप को सिमरण कर रही है, तो वो साक्षात्कार कराने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना। और सतो प्रधान हमने अभी इसीलिए देखा कि हम कब होते हैं सतो प्रधान, हम सतयुग में होते हैं। तो मैं सतयुग के जीवन को देखूं कि सतयुग में भी तो हम लेन देन कर रहे थे ना, पर किस चीज की लेन देन कर रहे थे? कभी किसी की हमने निंदा नहीं की थी इधर उधर बैठ के कि वो फलाना ऐसा ये फलाना ऐसा, नहीं निंदा नहीं की थी, पीठ पीछे इधर की चुगली उधर चुगली नहीं की थी। तभी तो बाबा ने कहा ना अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो और दिव्य गुणों को धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि बनाओ। यही समझना है हमें। तब कहा ना कि बाबा कहते मुरली का एक एक महावाक्य लाखों के बराबर है। क्या भाव है उसके पीछे कि उस एक एक महावाक्य को ऐसे गहराई में उतर के समझूं कि सचमुच अगर बाबा ने आज मुझे ये बात बोली है, मतलब क्यों ऐसे बोला जा रहा है, मेरे जीवन में उससे क्या फायदा होने जा रहा है, मतलब जो कहा ना अवगुण, तो मैं किसी के अवगुणों को न देखूं न वर्णन करूं। क्योंकि नहीं, बाबा ने आज क्या बोला कि ज्ञान के अलावा की बातें न सुनो और न सुनाओ। ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्या बनना है, मुझे अपने संपन्न स्वरूप तक आना है। तो मेरा संपन्न स्वरूप कौन सा था? सतयुग में संपन्न स्वरूप था ना, मैं 16 कला संपूर्ण थी। अब सतयुग के जीवन में देखूं, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि सुन तो बात कैसे करेंगे फिर, तो मैं सतयुग के जीवन को देखूं, क्या देवताएं आपस में बात नहीं करते थे? करते थे। क्या देवताएं घूमने नहीं जाते थे? जाते थे। देवताएं भोजन आदि का टेस्ट नहीं लेते थे? तो मना करते। बाबा बोलते हैं ना, वहां पे तो बाबा ने तो वर्णन किया है ना कि ऐसे फल होंगे कि आपको अलग अलग से उसमें चीनी और वो सब मिलानी नहीं पड़ेगी। हाँ, अब बस उठाया, तोड़ने के लिए भी मेहनत नहीं, आज तो नारियल को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती और उसका टेस्ट अगर मुझे पसंद नहीं आता तो थोड़ा चीनी डाल दो, बड़ा थोड़ी काली मिर्ची डाल दो, थोड़ी सी गुड़ डाल दो, ये हम एक्स्ट्रा डालते हैं ना उसको टेस्ट देने के लिए। लेकिन सतयुग में तो हमने ये सब किया ना, सतयुग में भी तो हम घूमने भी तो गए। बाबा कहता है तुम्हारे को संकल्प आएगा कि वहां जाओ, पुष्पक विहार सामने खड़ा है दरवाजे पे, बैठे संकल्प किया और आप पहुंच जाओगे। मित्रों के पास जाओगे ना वहां पे, ऐसे थोड़ी कि नहीं जाओगे, ये तो सब करोगे ना। तो जो आज हम कह रहे हैं कि अगर बाबा ऐसे कहता है तो फिर हम कर्म कैसे करें, ये कैसे नहीं करें, तो वो सब तो हम वहां पे भी तो कर रहे थे, घूमना फिरना। बाबा कहते हैं वहां पे भी तो स्वयंवर ये सब होगा ना, बच्चों के बाद अगर जन्म होगा तो क्या बाकी सबको पता नहीं चलेगा क्या? तो कुछ उस हम कहते हैं हर दिन उत्सव होगा, मतलब क्या? प्रोग्राम तो होगा ना। एक राजा माना क्या? एक राजा माने ही राजधानी माने, कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो चलते रहेंगे ना। तो आज भी तो हम वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहां पे भी चलेगा, ऐसे थोड़ी कि नहीं चलेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे अशांति क्रिएट हो, ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे कि एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव अंदर में आए, ऐसी बातें नहीं करेंगे कि ये मेरे से आगे क्यों गया, वो ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होगी। ये अंतर हमको देखना है। तो हम बात कर रहे थे कर्म, है ना, ये हम फिर अगर ये बातें नहीं करें तो क्या सुनेंगे, क्या सुनाएंगे? तो सतयुग में भी तो सुनते थे, देखते थे, खेलते थे, सब कुछ तो किया ना। तो यही नोटिस करना है, क्योंकि मैं इस समय संगम पर हूं। चलो, कलयुग में ये बातें होती है कि ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, अशांति क्रिएट करने वाली बातें करते हैं, और सतयुग में है कि शांति, प्रेम। इस समय मैं कहां हूं? मैं ना तो सतयुग में हूं, ना तो मैं कलयुग में हूं, मैं संगम पर हूं। और कौन से संगम पर हूं? सतयुग से कलयुग में जाने वाले संगम पर हूं, या कलयुग से सतयुग में जाने वाले संगम पर हूं? तो इसलिए मुझे क्या नोटिस करना होगा? इसलिए मुझे प्रैक्टिकल जीवन में किसको सामने रखना है मॉडल के रूप में, वो देखना होगा ना। अगर हम नीचे उतर रहे तो रावण को देखें, भाई मुझे सतयुग से नीचे की ओर उतरना है, तो रावण ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही बना वो। लेकिन मुझे अभी क्या करना है? मुझे कलयुग से सतयुग की ओर जाना है, कि सतयुग जहां हम 16 कलश संपूर्ण थे, जिसकी ही यादगार आज भगत लोग सिमरण कर रहे हैं, मंदिर बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उसको क्या तो भेंटे चढ़ा रहे, आलिशान मंदिरों में उनको स्थान दे रहे हैं। इतने संपन्न बने थे ना हम, संपन्न माना ही जहां पर उसके ऑपोजिट का कोई नाम निशान नहीं। शांति का ऑपोजिट शांति बिल्कुल नाम निशान नहीं है। दूसरा अगर कहें कि ये ज्योत जिसको हम कह रहे हैं, ज्योति माने ही प्रकाश फैलाना। दिया जलाया ही किस लिए जाता है? धुआं फैलाने के लिए या प्रकाश फैलाने के लिए? किसके लिए जलाया जाता है दिया? लेकिन अगर दिए से घी कम होता जाए तो फिर धुआं आ जाता है ना। तो यही नोटिस करना है मुझे अपने आप को, कि अगर जैसे कहा ना कि बात करेंगे तो आएगा ना ऐसा, तो यही नोटिस करना है, घी कम गया है यहाँ पे, घी कम हुआ है। हाँ, अगर धुआं निकल रहा है, किसी के लिए मन में आ रहा है घृणा का भाव, किसी की तरक्की देख के अंदर में ईर्ष्या हो रही है, इधर घी कम है, इधर घी कम हो गया है ना। क्योंकि बिना घी कम हुए धुआं दिया कभी धुआं नहीं देगा। मना उसकी भी देखो एक लिमिट है, कि जैसे कहा दिया जब जलेगा तो पहले 100% प्रकाश देगा, और फिर जलते जलते कम हो रहा है तो तुरंत थोड़ी धुआं देता है, 50% के बाद। देखो बाबा ने क्या कहा, हम 16 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण माना 100% है, और फिर जाके हम दो उस 1250 वर्ष तक पूरा युग जो है, नेक्स्ट युग में आते तब जाके हमारी दो कला कम होती है। तो अगर 16 कला माना 100%, तो 14 कला माना कितना परसेंट? 80 से भी अबव 85, हाँ बराबर होगा, 87-88% होगा, सिर्फ 12% कम होता है। लेकिन उस 12% कम में भी अभी भी क्या है जीवन में, अभी भी वही खुशी है ना। खुशी वहां पे त्रेता में अभी भी प्रेम है कहीं नफरत वहां पे नहीं है, तो अभी भी वो प्रकाश ही है, बस पहले की भेंट में थोड़ा सा कम है, बस इतना ही, थोड़ा सा 12-13% ना, और क्या। लेकिन वो 1250 वर्ष मना त्रेता पूरा होते थे, द्वापर में आते आते हम बाबा कहते हैं तुम 8 कला वाले बन जाते हो, मना 50% तक आ जाते हैं। तो देखो दिया जब जल रहा है तो प्रकाश जो है एकदम से कम नहीं हो रहा है, शुरू में बहुत स्लो रेट है उसका प्रकाश कम होने का। देखो दो 1250 वर्ष तक सिर्फ 12-13% नीचे गिरे हैं, लेकिन अगले 1250 वर्ष आते आते हम 50% डाउन हुए हैं। समझ में आ रहा, प्रकाश जो डिक्रीज हो रहा है उसका रेट समझ में आ रहा है। लेकिन वो मना 1250 प्लस 1250 मना 2500 मिला के उसके बाद कहा द्वापर आ गया। द्वापर माना दोपुर, और दोपुर माना है शांति भी अशांति भी, सत्य भी असत्य भी, प्रकाश भी धुआं भी, है ना। तभी आता है ना धुआं निकलता है। तो अब मुझे ये चेक करना है, जब हम कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि दिव्य गुणों को धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि बनाओ, तो मुझे हर पल अपनी आपकी चेकिंग क्या करनी है कि यहाँ पर किसी को देखकर ईर्ष्या आ रही है, माना ये बुद्धि सत्व प्रधान नहीं है। किसी ने मेरे को कुछ किया, मेरे को उसके प्रति घृणा आ रही है, माना ये बुद्धि सत्व प्रधान बुद्धि अभी भी नहीं है। और सत्व प्रधान नहीं है माना आई, माना ये धुआं था और मतलब इतना घी मैंने इसमें डाला नहीं है। धुआं तभी निकलता है ना, अगर घी उसको प्रॉपर होता 50% तक तो धुआं निकला ही नहीं ना। तो अभी मेरे को सोचना चाहिए अगर धुआं निकल रहा है, माना मैं 50% तक भी नहीं भरा है अपने दिए को। एक विद्यार्थी एग्जाम देनी होती है तो तैयारी करता है ना कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, अभी तक मैंने कितना पढ़ा है। तो अभी संगम के 80 साल बीत चुके हैं और इतना बड़ा लक्ष्य है मेरे सामने कि संपन्न स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को, 16 कला वाले स्वरूप को प्राप्त करना है। मैं तो अभी 50% तक भी नहीं पहुंची हूँ। अगर मैं 50% तक भी नहीं पहुंची हूं तो मुझे कितना अटेंशन रखना है कि मेरे अंदर घृणा भाव नहीं आए, मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं आए, कोई परिस्थिति में मैं अंदर से डगमग न हूं, कितना ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, है ना। तभी क्यों कहा बाबा ने, पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। तो जब पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करेंगे तो कौन से संस्कार को यूज करेंगे, तब बाबा कहता है बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। तुमने कहा ना बाप ही मेरा संसार है, बाबा कहते हैं, पूछते हैं ना मुरली में, तुम कहते हो बाप ही मेरा संसार है। अब बाप ही मेरा संसार माना क्या, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो ये जो पुराने स्वभाव संस्कार वो मेरे संस्कार नहीं है, वो कौन से संस्कार थे, इस शरीर के संग में रहते रहते तैयार हो गए। रजोगुण जरूरी था कर्म करने के लिए, तमोगुण जरूरी था कर्म से फिर छुट्टी थोड़ी राहत लेने के लिए, लेकिन मैंने उस रजोगुण को, उस तमोगुण को इतना बढ़ा दिया कि उसने दूसरा ही रूप ले लिया, ईर्ष्या का, वैर विरोध का, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये अटेंशन रखना है हर पल, सत्व प्रधान बुद्धि बनानी है, माना ही चाहे कोई कुछ भी कहे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अगर किसी चीज का अटैक होना रहता है तो पहले युद्ध करते थे लोग, तो क्या पहनते थे, ढाल और ये कवच पहन लेते थे कि मालूम है कि मैं युद्ध के मैदान में हूँ, सामने वाला वार करेगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मुझे क्या कर लेना है, कवच पहन लेना है, अपनी सेफ्टी के लिए मुझे ढाल धारण कर लेना है, ताकि आगे वाला वार करता भी है बचा रहा हूँ। तो मालूम है मैं भल संगम युग में आ गई हूँ, लेकिन रहती किनके साथ हूँ, रहती किसके साथ हूँ, तो वार करेगा वो, लेकिन मेरे ऊपर कवच पहना हुआ रहे, मेरे हाथ में ढाल रहे। ये जो देवियों को इतने सारे वेपन्स दिए वो क्या है, ज्ञान की एक एक पॉइंट मेरे अंदर इतनी भरी रहे, जो कहते हैं तरकश में बाण अगर होंगे तो जब तीर मारना होगा तो निकाल के मार सकते हैं ना, अगर तरकश में तीर हो ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, तीर चलाना आता है पर तीर है ही नहीं, तीर चलाना तीरंदाजी सीख लिया है मैंने लेकिन तीर ही नहीं तो क्या मारेंगे, है ना। तो ज्ञान की एक एक पॉइंट मुझे अपनी बुद्धि में धारण करना, तब कहा बाबा ने दिव्य गुण वाली बुद्धि बनाओ। वो अवगुण धारण करने वाले बुद्धि नहीं, फिर अवगुण अगर धारण करके रखे होंगे तो जब भी कोई मेरे से सामने से वार करता है तो मैं भी कौन सा वाला तीर उठाऊंगी। देखो सीरियल आता था ना रामायण या महाभारत, तो रावण की सेना एक तीर मार रही है कि राम की सेना को खत्म करना है, पर राम की सेना रावण की सेना को खत्म करना वो तीर नहीं मारती थी, लेकिन उसने जो तीर भेजा, तीर को खत्म करने वाला तीर भेजती थी, है ना। कौरवों की तरफ से तीर आ रहा है कि पांडव सेना को खत्म करना है, लेकिन पांडव कौरव सेना को खत्म करना वो वाला तीर नहीं भेज रहे, लेकिन उन्होंने जो तीर भेजा है सिर्फ उस तीर को खत्म करना है। तब सामने से कहा, हम कलयुग में रह रहे हैं, वहां से तीर आएंगे, नफरत के, ईर्ष्या के, द्वेष के, कमजोर कर देने के, अशांति खड़ी करने के, ये तीर आएंगे, लेकिन मेरे पास वो तीर हो जो इस तीर को खत्म करे, उस व्यक्ति को खत्म नहीं करे। हम जो व्यवहार करते उस व्यक्ति को खत्म करने वाला व्यवहार करने शुरू कर देते है ना, ऐसे ही होता है ना। तब कहा, ढाल और कवच से अपने आप को सुसज्जित करके युद्ध के मैदान में जाना होता है ना। तब क्यों बाबा कहता है कि बच्चे अमृत वेला जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बाबा की मुरली जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि वो अमृत वेले जो शक्तियां हम ग्रहण करेंगे, मुरली से जो ज्ञान की पॉइंट्स हम जमा करेंगे, फिर जो हम कर्म स्थल पे गए वही तो हमारा कर्म क्षेत्र, वही तो हमारा युद्ध का मैदान है ना। तो ढाल और कवच पहन लेंगे ना पहले ही, तो फिर सामने वाला वार करेगा भी तो हम फिर भी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। और सेफ रहेंगे माना इधर से वो ईर्ष्या द्वेष अशांति खड़े करने वाले तीर नहीं जाएंगे, बल्कि वहां से जो ऐसे वाले तीर आ रहे हैं उन तीरों को समाप्त करने वाले तीर यहाँ से निकलेंगे। इसको कहते हैं बुद्धि रूपी तरकश में दिव्य गुण के बाण भरना है, इसको ही कहेंगे हम सतो प्रधान बुद्धि। क्लियर हुआ। तो हम सत्युग में सतो प्रधान है, मतलब सतो गुण बहुत परसेंटेज ज्यादा है, रज और तम है, क्योंकि कर्म उसके बिना होगा नहीं, और कर्म से फिर राहत जो नींद के रूप में हम लेते हैं वो भी नहीं होगा नहीं तो। और हम सभी जानते हैं एक व्यक्ति अगर कई बार काम ज्यादा होता है तो चलो ठीक है आज नहीं सोता हूँ, और काम ज्यादा है चलो आज रात को भी मैं टाल लेता हूँ, कितना टालेगा, एक रात, दो रात, तीन रात, उससे ज्यादा कितना चिड़चिड़ा हो जाता है वह व्यक्ति, समझ में आ रहा। तो ये राहत वापस कर्म करके फिर उससे राहत लेना बहुत बहुत जरूरी होता है, इसलिए रजो और तमोगुण होता ही है। लेकिन फर्क ये है कि सतयुग में सतो का परसेंटेज ज्यादा, त्रेता में सतो थोड़ा सतयुग से कम है, परंतु फिर भी रजो और तमो से तो ज्यादा ही है। लेकिन द्वापर में आते आते हमने कहा हम बन गए रजो प्रधान, माना रजो अब ऊपर उठ गया, कमान किसके हाथ में आ गई, रजोगुण के हाथ में। तो रजोगुण चाहे तो सतोगुण को यूज कर रहा है ना, और रजोगुण बढ़ गया तो चाहे तो वो रावण के संस्कार भी यूज कर रहा है। रावण के संस्कार तैयार हो गए ना, फिर धुआं बाद में तैयार हुआ ना, पानी कहीं पे भी आप रखो लंबे समय तक रहता है, फिर बाद में काई जमा होती है ना, पहले थोड़ी जमा होती है, काई तैयार होती है ना। तो ये काई तैयार होना, ये धुआं तैयार होना, ऐसे ही आत्मा में रावण के संस्कार तैयार होना, यह उस शरीर के अंदर रहते रहते ऐसा हो जाता है। तो जब पानी की प्योरिटी खत्म हो जाती है, काई आती है, तो धुआं आ गया तो प्रकाश का उजलापन खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे ये रजोगुण बढ़ता है तो हमारे सत्व गुण जो है कम हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि द्वापर आते आते दोनों, कभी जीवन में हम शांति से भी चल रहे हैं तो कभी जीवन में अशांति भी क्रिएट कर लेते हैं, कभी प्रेम भी कर लेते हैं तो कभी घृणा भी जागृत कर लेते हैं। तो ये जब द्वापर था तब अभी जस्ट थोड़ी सी शुरुआत हुई थी धुएं की, मतलब फिर भी शांति बहुत थी, उसकी भेंट में अशांति थोड़ी थी, प्रेम बहुत था उसकी भेंट में घृणा कम थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे वो बोलते ना 9 का टेबल आप लिखो कैसा होता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो जो उसकी दो लाइन बनती है ना, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके वो 9 तक जाता है, और दूसरी वाली कॉलम देखेंगे तो 9 से पहला जीरो से नाइन तक जा रहा है और दूसरा नाइन से जीरो, तो यही फर्क पड़ता है द्वापर के बाद कि हमारे सतो गुण नीचे नीचे जा रहे हैं और रजो तमो गुण बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग के एंड में इतने बढ़ गए, तब कहा कि कलयुग में आते आते हम क्या कहलाते हैं, रजो गुण भी नहीं तमो प्रधान कहलाते हैं। कि तमो प्रधान माना ही अंधेरा, तम माना अंधेरा होता है ना, कि अंधेरे में व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है और अंधेरे में व्यक्ति गलत ही गलत करता रहता है ना, तो हम इतने अज्ञानता के घिर जाते हैं कि हर कार्य जो कर रहे हैं सब गलत ही होता जा रहा है। इसलिए देखो आज लोग परिवार में कहते चिंता हो गई है मुझे अपने बच्चे की, तो देखा जाए ऊपर से तो चिंता करना माना मैं उसकी शुभ चिंतक हूं इसलिए चिंता कर रही हूं, लेकिन अगर उसके डेप्थ को जाकर देखे तो चिंता करने से क्या उसका भला होने जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भाई हम दुख मनाते हैं, फलाना चला गया, ये हो गया, रोते हैं, ऊपर से देखें तो हाँ हमारा उसके प्रति प्रेम था ना इसलिए, लेकिन बाबा क्या समझाता है, अगर सच्ची में अगर प्रेम है तो ज्यादा शांत रहना है आपको, क्योंकि वो आत्मा अभी कहाँ गई है, दूसरी जगह गई, एक नया रोल शुरू करने गई है, तो जब एक नया रोल शुरू करने जा रही है तो उसकी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, और हम यहाँ रो रो के उसको वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इसी को कहा ना अज्ञानता, जिसको हमने सोचा कि अच्छी चीज तो कर रहे हैं ना, हमारा अजीज हमारा प्यारा कोई चला गया तो हम रो रहे हैं, मतलब हम ये जता रहे हैं कि हमारा उनके प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, लेकिन अगर ज्ञान को अच्छी से समझे तो अरे जिस व्यक्ति के लिए तुम्हें प्यार होता है, जिस व्यक्ति के लिए सम्मान होता है, आप उसका फ्यूचर क्या देखने चाहोगे, बिगड़ा हुआ है अच्छा, तो आप अगर रो रहे हो तो उसका फ्यूचर बिगड़ रहा है या अच्छा हो रहा है। इसको ही कहा तमो प्रधान हो गए, कि जहां जो बात सही है उसको सही नहीं समझते और जो नहीं सही है उसको सही समझते हैं। कि जहां हमने कहा कि मैं देह नहीं हूं लेकिन हम इसको देह पकड़ के बैठ गए, और तब कहा क्यों मैं इतनी पोजीशन वाला हूं तो क्यों मेरे को अभिमान आना सही नहीं है, बड़ी पोजीशन वाला हूं ना मैं, आखिर फर्क है ना, तो हमने इसको भी कहा क्या है सही है कहा, तो जो सही नहीं है उसको हम सही मानते जाते हैं, उसको ही कहा तमो प्रधान की अंधकार में व्यक्ति को जो चीज जैसी है वैसे नहीं दिखाई देती है। तो अब क्या करेंगे, होली बनाएंगे ना आज अच्छी रात को, हाँ तो अवगुण वाली बुद्धि का विनाश उस होली का में आज रात को मनाएंगे, वो जलाएंगे होली का, तो उसमें क्या करना है अपनी कमजोरियों को स्वाहा, तो कमजोरियों को फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ हवन में यही करते थे ना स्वाहा स्वाहा, देखो स्वाहा करने के पीछे भाव क्या होता था, आज भी करते हैं लोग हवन, हवन में कौन सी चीजें डाली जाती हैं, भले स्थूल में वो डालते लेकिन उसका भी वरना वही चीजें क्यों डाली जा रही हैं, वो चीजें डाली जा रही हैं जिससे वातावरण क्या हो जाए शुद्ध हो जाए, फिर वो तिल हो जो भी हो पर उसका भाव क्या है, ये चीजें डलेगी वातावरण क्या हो जाएगा शुद्ध। तो अब यहां बुद्धि को मुझे क्या करना है सतो प्रधान, तो इसलिए कौन सी चीजें डालनी पड़ेगी हाँ जिससे ये शुद्ध बने, वातावरण जिससे शुद्ध बनता है वो चीजें मुझे स्वाहा करनी होती है। तो अभी मुझे बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है, माना धुएं रहित बनाना है, काई रहित बनाना है, और ये धुआं काई क्यों आ रही थी इसमें, क्योंकि अवगुण भर के रखे थे, कमजोरियां भर के रखी थी, तो वही अवगुण और वही कमजोरियां क्या करनी होगी आज स्वाहा, जिसको ये बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि एक बार चीज दे दी अब वो है नहीं ना मेरे पास, तो फुल स्टॉप अपने आप हो जाएगा, जब तक है तो यूज करते रहेंगे। इसलिए कई बार कोई चीज होती है ना घरों में तो हम क्या करते हैं, ना होगी ना यूज करेंगे, यहां से उठा लो आप, जब तक होगी तो मैं यूज करता रहूंगा, हाँ जिसको हम कई बार बोलते हैं ना क्या वो बोलते हैं, एक पता नहीं हिंदी में एक कहावत है याद नहीं आ रही अभी, मतलब न रहेगा सांप, हाँ बोलते न रहेगा सांप ना बचेगी बांसुरी, लेकिन अगर सांप होगा तो बचती रहेगी ना। तो अगर कोई चीज मेरे पास है तो कभी ना कभी यूज में आ जाए, अगर पॉकेट में कोई चीज है तो कभी ना कभी तो हाथ जाएगा निकालने के लिए। तो अगर बुद्धि में भरे पड़े रहेंगे अवगुण तो कभी ना कभी तो मैं यूज कर ही लूंगी, क्यों, सामने वाले ने गुस्से किया तो मैंने भी कर दिया है ना मेरे पास भी। और इसलिए बाबा कहता है न रहेगी न यूज करोगे, तो क्या करना है फुल स्टाफ, और लगता है वो स्वाहा करने से होगी नहीं तो तभी फुल स्टाफ हो सकता है ना, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आज हम होली मनाने वाले हैं, बाबा ने भी कहा ना आज मैंने तुमको होली और धुईया खिलाया, खिलाया मतलब बाबा का भाव था खिलवाया, खिलाया नहीं खिलवाया वरना वो खेल किया, क्योंकि खेलते हैं ना दूसरे दिन, तो ज्ञान बाबा ने वही तो कहा ना, आज जलाना वही किया, कमजोरियों को फुल स्टाफ करो नाश करो, ये सब बातें बोली मानो जलाया, और सत्व प्रधान की जिससे लोगों को हमारे से साक्षात्कार होंगे, तो ये खेल पाल हो जाएगा ना, फिर लोग कहेंगे अच्छा उनके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, यही हो रहा है ना, मंदिरों में जाते हैं वो लोग पास पास मंदिर में नहीं जाएंगे, वो खर्चा करेंगे, वैष्णो देवी में जाएंगे ना तो वहां मैंने सुना है सब मन्नतें पूरी हो जाती है, इतना दूर तक सिर्फ क्या करना, क्या सिर्फ दर्शन, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन दर्शन मात्र से वो सब कुछ हो जाता है। तो इतना हमें ऊंचा उठना है कि लोग हमें देखते ही उनके जीवन में परिवर्तन, ये भी तो खेल हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जब वो देखेंगे कि इनकी कैसे प्रेम की राह चल रही है, खुशियों की राह चल रही है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। कई बार लोग जब यहाँ आते हैं ना हमारे शिविर के प्रोग्राम, विंग्स के प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो यही कह के जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी वैल्यूज वाला जीवन हो सकता है, उसका मॉडल हमें यहाँ देखने को मिला। तो और जब मॉडल मिला माना आश है कि ऐसा जीवन जी सकते, वरना दुनिया में रहते हुए तो क्या कहते हैं बहन जी कलयुग में ये सब हो सकता है क्या, सीधा ये जवाब देते हैं कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन जब यहाँ आकर देखते हैं तो मन में आशा जगती है कि हाँ ऐसा भी जीवन जी सकते हैं, ये संभव है, असंभव नहीं है। तो हमारे जीवन को देखकर ही तो उनको प्रेरणा मिलने वाली है, और तभी तो जाके अभी जो प्रेरणा लेंगे पूरा कल्प जब द्वापर फिर शुरू होगा वो हमारा सिमरन करते रहेंगे, है ना। तो इतना ऊंचा हमको अपने आप को उठाना है, क्योंकि भगवान हमें उस नजर से देख रहा है। और क्यों भगवान हमें उस नजर से देख रहा है, क्योंकि खुद इतना ऊंचा है ना, खुद एक राजा का शान किससे दिखाई देता है, उसका बच्चा जितना ऊंचा दिखेगा उसी से दिखाई पड़ता है ना कि यहाँ फलाने का बेटा है। तो अगर हमारे में दिखाई देगा तभी उसकी शान बढ़ेगी ना, शान तभी उसकी बढ़ सकती है ना, तभी हम गीत गाते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो रचना को देखकर उस रचयिता का ज्ञान हो सकता है कि उसमें कितनी क्वालिटीज होगी, तब भगवान के पास जो क्वालिटीज है वो चाहता है मेरे बच्चों से दिखाई पड़े, लोगों को साक्षात्कार हो और लोगों के जीवन में सुख शांति बहाल हो जाए। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है, क्योंकि हम विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो आज सचमुच में होली जो जलने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, अपनी कमजोरियों को, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, अपने अवगुणों को स्वाहा। ठीक है, ओम शांति।